जो लोगों की बहुत बड़ी तादाद 90% 95% तादाद अगर कोई बात कह रही हो तो इसका मतलब गालिब उर्फ यही बात कह रहा है, फिर उसके मुताबिक अमल करना होता है। अच्छा, अब मसला यह है कि उर्फ से मुराद, ये बात याद रख लीजिए, वो मुआशरा है कि जहां मुकल्लफ इस अमल को अंजाम देना चाहता है। यह नहीं होगा कि मसलन आजकल जैसे लोग कह रहे हैं दीगर रहबर के मसले को फिर मुझे बार बार कहना पड़ता है, उनके मसले को एक तरफ कर दें, वो तो बात तय हो चुकी है उनकी। दीगर मुज्तहिदीन कहते हैं सिर्फ उस जगह, ये नहीं कि लोग कहते हैं कि भाई अगर यहां पे हम उसका फोटो खींच के और हम गैर मुल्कों के अंदर काफिर मुल्कों में अगर दिखा रहे हो और वहां तौहीन हो रही हो, नहीं, इसको नहीं समझा जाएगा। उस उर्फ वो वाली जगह जहां जहां ये मुकल्लिद काम ये इस अमल को अंजाम देना चाहता है, वो वाला मुआशरा से मुराद है, वहां पर वो चीज तौहीन मजहब नहीं होनी चाहिए। मसलन खुद आयतुल्लाह हाफिज बशीर नजफी ने भी अपने उसमें लिखा है कि मसलन बहुत सारे मगरबी ममालिक ऐसे हैं जहां कानूनन भी ये आमतौर पर मना है, और वहां अगर करेंगे तो लोगों के लिए बड़ी, ना उन्होंने इमाम हुसैन का कुछ पता है ना कुछ है, लोग वहां पर शिया मजहब की तौहीन जो है वो हो जाएगी। लेकिन देखिए, रहबर मौजम ने जो वैसे तो फतवा इसमें दिया है कि काबिल तवज्जो जरर ना हो और तौहीन का बाइस ना हो, तो फिर इसकी जो इजाजत है बगैर फल की जो जंजीर होती है इसकी इजाजत उन्होंने दी है, लेकिन शर्तों के साथ दी है। अगर किसी जगह ये भी तौहीन मजहब शुमार होने लगे तो उनके फतवे में ये भी जायज नहीं, यानी ये बगैर फल की जंजीर भी जायज नहीं रहेगी अगर किसी खास मुआशरे के अंदर तौहीन मजहब हो। लेकिन उसका अभी तक उन्होंने कोई फतवा नहीं दिया है और ये लोगों पर ही छोड़ा है कि अगर काबिल तवज्जो जरर का बाइस ना हो और मसलन हुज़्न और अंधों के मजहर के अंदर शुमार किया जाए तो जायज है, लेकिन अगर ये भी तौहीन का बाइस बने तो उनके फतवे में ये भी जायज नहीं। अच्छा देखिए, जिस जगह ये काम करना चाह रहा है मुकल्लिद, वहां का देखा जाएगा कि उस जगह हो सकता है कि किसी जगह देखा जाए तो ये हाथ का मातम करना, मसलन जोर जोर से हाथ का मातम करना, ये सब मुज्तहिदीन कहते हैं जायज है, लेकिन हो सकता है ये जोर जोर से हाथ का मातम करना किसी खास जगह जायज ना हो। मसलन इसकी एक मिसाल दे दो, मसलन ईरान के सदर जनरल असेंबली में खिताब करने के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की जाएं और हाथ का मातम जोर जोर से डाइस पे यहां पे खड़े होकर करना शुरू कर दें, तौहीन मजहब हो जाएगा। हो सकता है कि वहां पर तौहीन मजहब हो जाए, लोग पूरी दुनिया देखेगी क्या हो रहा है, क्यों अपने जिस्म के ऊपर हाथ मार रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, यानी मजाक उड़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा एक तौहीन का। तो हाथ का मातम जो जायज है बिल्कुल, वो भी किसी खास जगह पे हो सकता है जायज ना रहे, अगरचे हाथ का मातम है, तो क्योंकि उसके अंदर तौहीन मजहब किसी खास जगह के ऊपर आ सकती है। अच्छा, अब बहुत से लेकिन महाराज ऐसे भी हैं जो इसमें भी उन्होंने इख्तलाफ किया है, खैर ये तो एक अलग मौजू है, लेकिन बहुत से लोगों ने आयतुल्ला इसहाक फैयाज से भी पूछा है कि मैं जो हूं मसलन डेनमार्क के अंदर रहता हूं, क्या मुझे इजाजत है कि मैं वहां पे कमाजनी करूं? तो उसमें उन्होंने कहा कि तदबीर जो है वो शायर हुसैनी में से है, जायज है, कोई हर्ज नहीं है जब तक कि कोई ज्यादा नुकसान और जरर ना पहुंचे, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दरकिश्वर है गरबी बादशाह या दरकिश्वर है मुसलमान, कि मुसलमान मुल्क हो या काफिर मुल्क हो हर जगह की जा सकती है। लेकिन अगर उनको भी कहा जाए कि जनाब इस पर्टिकुलर जगह पे जो हम करने जा रहे हैं वहां पर तो लाजमी 100% तौहीन मजहब हो जाएगी, तो आयतुल्लाह इसहाक फैयाज भी कभी यही फतवा हो जाएगा कि वहां पर फिर करने की इजाजत नहीं। तो जिस जगह, अच्छा अब यहां पाकिस्तान और इंडिया में अगर कोई शख्स करे और फिर उसको लोग आमतौर पे कहते हैं कि भाई अगर बैरून मुल्क में जो कुफार वगैरह देख रहे हैं तो वो उसका जो है वो मजाक उड़ाते हैं, तो नहीं, वो सिर्फ उस जगह के जहां पे मुकल्लफ ये काम करना चाहता है सिर्फ उस जगह के उर्फ को देखा जाएगा, किसी दूसरी जगह के उर्फ को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। अच्छा, कुछ साहिबान इल्म उलमा हैं, उन्होंने बाकायदा इस मौजू पर किताबें भी लिखी हैं, ताकि मैं एक दूसरा पहलू भी आपके सामने रख दूं। आयतुल्ला शेख जाफर मुर्तजा आमिरी, ये जो लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, ये फरमाते हैं कि चलें, इन्होंने मरासिम आशूरा पे किताब लिखी, ये फरमाते हैं कि चलें मगरबी मुल्कों में हम मान लें कि वहां पर अगर हम जंजीरजनी और कमाजानी करेंगे तो तौहीन मजहब है, लेकिन मोमिनीन के अपने शहरों में क्यों तौहीन मजहब हो रही? मसलन वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स करबला में हरम इमाम हुसैन में अंदर कमाजानी होती, वो कहते हैं कि हरम में हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुरूद भेजे ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहां पर कम अज़ा नहीं होती, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ चैनल्स इसको अब तक दिखाते भी रहे, लेकिन कभी इस पर तौहीन मजहब का उनवान सादिक नहीं आया। यानी अगर तौहीन मजहब होना, यानी जाफर मुर्तजा आमली कहते हैं कि अगर तौहीन मजहब होना एक यकीनी आलमी हकीकत होती तो सारे मराजे यकीनी तौर पर एक जबान होकर जो मुस्तहब भी कहते हैं वो भी इसको हराम होने का फतवा दे देते, और सिर्फ शराइत बयान करके ना रह जाते कि अगर तौहीन मजहब है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तौहीन मजहब जमानो मकान के एतबार से मसला मुख्तलिफ हो सकता है। बाकायदा एक इल्मी बहस है कि तौहीन मजहब जमानो मकान के एतबार से अलग हो सकता है। जैसे कि आयतुल्लाह यदुल्ला का जो एक मसला इससे पहले हमने जिक्र किया, वो कहते हैं हो सकता है कि किसी जगह हराम हो सकता है किसी जगह मुस्तहब भी हो। मुस्तहब होने के मायने ये हैं कि बहुत सी जगह ऐसी भी हो सकती हैं कि जहां पर हो सकता है कि कमा जनी और जंजीर जनी वगैरह तकवियत मजहब का बाइस भी हो। ये देखिए एक इल्मी पॉसिबिलिटी, अभी हम इल्मी पॉसिबिलिटीज के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी जरा जज्बाती और बहुत सारे जो और मसले हैं उसको एक तरफ रख दें। जब भी उन्होंने कहा हो सकता है कहीं हराम हो लेकिन किसी जगह, मसलन देखिए बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां हम हैरान होते हैं वाकईतन कि इन इन जगहों के ऊपर आजादारी होती है। यानी ऐसे ऐसे दूर दराज के ममालिक यहां पर ऐसे ऐसे लोग ना मरासी में आजादारी मुख्तलिफ तरीकों से मसलन अंजाम दे रहे हैं। लोग फरमाते हैं कि हो सकता है किसी जगह मुस्तहब हो जहां लोगों के लिए तकवियत का बायस हो। मसलन इतने बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो मरासी में आजादारी के जरिए मजहब से अटैच हैं, पूरे साल ना वो कोई दर्स सुनते हैं ना किसी मजलिस के अंदर जाते हैं ना उनके पास इस किस्म के कोई मौके होते हैं उनके पास। तो ऐसे अफराद के लिए अब मेरे ख्याल आप लोगों के लिए शायद कुछ नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। देखिए 3 घंटे का इंसान पहले तो जमाने में फिल्में वगैरह जो होती 3-3 घंटे लोग बड़े इत्मीनान से बैठ के देख लेते थे। तो अब समझे कि बहुत से इल्मी मौजूद ऐसे हैं, थोड़ी देर बैठ के अगर सुन लें उनको ताकि एक दफा मसला अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपके सामने में, सबके नजरियात बिल्कुल इस तरह टेबल पे मोबाइल फोन रखे हुए ना, इस तरह से आपको पता चल जाएगा अच्छा किसका क्या नजरिया है, कब कौन सी बात को उठाना है, क्या करना है, ताकि ये सब आपके सामने आ जाए। तो कह रहे तौहीन मजहब जमान और मकान के लिहाज से हो सकता है कहीं तकवियत मजहब का बाइस भी हो बन जाए। अब मैं खुद एक बहुत ही काबिल एतबार आलिम दीन जिनकी मैं इल्म की भी कसम उठा सकता हूं और उनकी अदालत की भी कसम खाने को तैयार हूं, बशर्ते आप मुझे भी इतना काबिल एतबार समझेंगे, मेरी बात पर यकीन करें। वो खुद फरमाते हैं कि इल्मी तौर पर, देखिए अब इसको कोई वैसा उसका ना कि कोई दलील के तौर पर क्योंकि सुनी सुनाई एक लिहाज से बात है, लेकिन मुझे इतने काबिल एतबार आलिम ने बात बताई कि एक इल्मी पॉसिबिलिटी के एतबार से खुद रहबर मौजम के ऑफिस उन्होंने फोन किया और वहां पर कहा कि एक इल्मी मसले के तौर पर इसको बताइए। वैसे तो सबको पता है कि रहबर मौजम इसको हराम करार देते हैं, लेकिन अगर किसी जगह तौहीन मजहब का बाइस बने तो हराम है और तौहीन तो ये तो मसला उनका है, लेकिन अब एक इल्मी पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं ताकि एक वाज़े तौर पर मसला सामने आ जाए कि अगर किसी जगह कमा जनी या जंजीर जनी करना अगर तकवियत मजहब का बाइस हो तो क्या तब भी हराम है। तो वहां से उनके ऑफिस से जवाब आया कि नहीं, इस इल्मी फर्ज में हराम नहीं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं अब तो क्योंकि हम यानी तो तशखीस मौजू है तो जाहिर है कि मसला तो यही रहेगा, लेकिन जिस तरह से आप फर्ज कर रहे हैं किसी इलाके के अंदर वाकई मोमिनीन इससे अटैच हैं, अगर हम वहां बिल्कुल इसको बंद कर दें और तो लोग उनके सामने पॉसिबिलिटी रखी जाए कि लोग बेदीनी की तरफ चले जाएंगे, मजहबी छोड़ देंगे, शायर हुसैनी को बिल्कुल ही उनकी निगाह में मशकूक हो जाएगा, वो तमाम चीजों से हाथ अगर हटा लेंगे तो फिर उस सूरत में वो कहते हैं कि फिर उस जगह के ऊपर इजाजत मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल लिखा हुआ फतवा कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो असलन फतवा उनका यही है कि हर सूरत में हर जगह पर हराम ही, लेकिन एक इल्मी पॉसिबिलिटी के एतबार से। तो ये उन्होंने तो क्योंकि हुक्म और फतवा जो भी है वो देख के इसको हराम करार दे दिया, लेकिन जो उलमा इसको नहीं मानते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि किसी जगह ये मुस्तहब भी हो सकती है। अच्छा, अब बाकायदा आयतुल्ला सईदुल हकीम तबातबाई मौजूदा मराजे के अंदर से भी हैं, उनसे भी ये बात पूछी गई कि लोग 10 मुहर्रम के दिन मुहर्रम के या में 10 मुहर्रम को बाकायदा अपने सरों पर तलवार मारते हैं और कमाजनी करते हैं, और एहतमाल होता है कि कहीं उनको कोई जरर ना हो जाए। और इसके अलावा क्योंकि ये तमाम उनकी फोटोज वगैरह इंटरनेट पे या मुख्तलिफ और जराए से मसलन टीवी वगैरह के ऊपर भी जाती है, लोग सब देखते हैं उसको, तो तौहीन मजहब का भी एक पहलू उसके अंदर आ सकता है, तो क्या सूरत में क्या हुक्म होगा। तो उन्होंने कहा कि बहरहाल ये जो तदबीर है ये दीगर शायर हुसैनी की तरह से कोई खास इसमें नस तो पाई नहीं जाती है कि बाकायदा हुक्म अलग से दिया गया हो कि जरूर अपने सर से खून निकालो, लेकिन हो सकता है कि किसी जगह पर ये काबिले कबूल हो करना किसी इलाके में, और किसी इलाके में इसको करना काबिले कबूल ना हो, यानी इलाकों के ऊपर ये डिपेंड करता है जहां पर ये चीज हो रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तौहीन जो है ये दूसरे फतवे के अंदर जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है कि ये जमान इला जमान, ये हो सकता है किसी खास जमाने में जायज हो, किसी यानी जमानों से इस पर फर्क पड़ता है, और कुछ लोगों का जौक अगर इसके खिलाफ है तो उन लोगों के जौक पर हुक्म नहीं लगाया जाएगा बल्कि लोगों की अक्सरियत की बात देखी जाएगी कि वो उसको तौहीन समझते हैं नहीं तौहीन समझते हैं। हो सकता है ना बाज़ औक़ात ये होता है कि चंद अफराद है उनको बात पसंद नहीं आ रही, तो चंद अफराद की बात नहीं कि उनको बात पसंद नहीं है उनके जौक के खिलाफ है तो हम हराम करार दे दें, इसी तरह चंद लोगों को बात पसंद आ रही है तो उसकी बिना पे जायज करार दे दें, वो कह रहे नहीं पूरे गालिब उर्फ को देखा जाएगा कि वो उसके हुक्म का तायुन करेगा कि वो चीज जायज है या जायज नहीं। हो सकता है किसी खास जमाने में तौहीन हो किसी खास जमाने में ना हो, हो सकता है कि किसी खास मुकाम पर तौहीन हो किसी दूसरे मुकाम पर ना हो, तो ये आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात याद रख ली, थोड़ा सा इसमें ये बीच में एक ऐसी बात आ गई क्योंकि जाहिर है असूल फिक्र वगैरह की इसमें बहुत से कवानीन आ जाते हैं कि जमाने और मकान के बदलने से मौजू बदल जाता है, अब इसकी मिसाल आएगी, और मौजू जब बदल जाता है तो उस पर जो हुक्म है वो भी बदल जाता है, यानी आप कहेंगे कि भाई अल्लाह का हुक्म तो एक ही होगा ना, तो जायज है या नाजायज है, तो ये हर जगह अल्लाह का हुक्म बदल क्यों रहा है, तो उसका उलमा ये जवाब देते हैं कि असल में अल्लाह का हुक्म नहीं बदल रहा है, मौजू बदल रहा है, मौजू के ऊपर जो हुक्म है वो भी बदल जाएगा क्योंकि वो चीज ही नहीं रही। मसलन उसकी एक मिसाल है शतरंज। देखिए रहबर मौजम और इमाम खुमैनी के नजदीक भी शतरंज हराम ही है, असलन हराम है शतरंज, लेकिन उस सूरत में हराम है कि जब किसी मुकाम जहां पे शतरंज खेली जा रही है वो आलात जुआ में समझी जाए। आयतुल्ला सिस्तानी तो फरमाते हैं चाहे आलात जुआ में समझी जाए ना समझी जाए, बहरहाल शतरंज मुकम्मल तौर पर हराम ही है क्योंकि शतरंज का बाकायदा नाम लेकर रिवायत में इसको मना किया गया है, तो चाहे इस पर जुआ खेला जाए या जुआ ना खेला जाए, चाहे वैसे ही दिल बस्तगी के लिए खेला जाए टाइम पास करने के लिए खेला जाए, हत्ता के बहुत से लोग पूछते हैं कंप्यूटर पे अगर हम खेलें शतरंज अकेले बैठे कंप्यूटर के साथ शतरंज खेलने, कहते हैं ये भी जायज नहीं, शतरंज हराम ही है। अच्छा अब लेकिन रहबर मौजम और इमाम खुमैनी की फरमाते हैं कि उस सूरत में अगर ये मौजू ही बदल जाए, यानी शतरंज आलात कमार से खारिज हो जाए, जिस इलाके में हम शतरंज खेल रहे हैं वहां पर ये कहीं दूर दूर तक तसव्वुर इसका ना हो कि ये जुए के आलात में शुमार होती, बाकायदा ईरान के अंदर, बाकायदा ईरान में इसके मुकाबले होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए आते हैं क्योंकि ईरान के अंदर वो कहते हैं कि अब कोई तसव्वुर जुए का शतरंज से वाबस्ता नहीं, लेकिन ईरान में जायज हो गई। लेकिन अगर हम कहें कि जनाब ये पाकिस्तान में भी हम इसे खेलने लगे तो यहां के उर्फ के मुताबिक आपको खुद पूछना पड़ेगा कि अभी भी ये शतरंज क्या पूरी से खारिज हो गई है या अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी लोग इसके ऊपर जुआ वगैरह खेलते हैं। अगर जुआ खेलते हैं इसके ऊपर लोग तो यहां पर भी उनके मुकल्लिद भी यहां पर भी शतरंज नहीं खेल सकते, लेकिन ये खुद उनको तहकीक खुद करनी पड़ेगी, खुद मुकल्लफ है इसके वो देखें इसको। तो अब क्या है, अब ये नहीं कह सकते कि भाई शतरंज तो शतरंज है हराम होनी चाहिए हर जगह उनके फतवे के लिहाज से, उन्होंने कहा नहीं। बाकायदा आगा गदीरी एक इमाम खुमैनी के जमाने में थे, उन्होंने बाकायदा इमाम खुमैनी को सारी अहादीस और सब लिख के भी भेजी थी कि आपने इसको हलाल होने का फतवा कैसे दिया है, क्या हुक्म खुदा तब्दील हो गया है। तो इमाम खुमैनी ने बड़ा तफसीली जवाब उनको दिया था और कहा कि हमारा मसला तब्दील नहीं हुआ, वही है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर शतरंज का मौजू ही बदल गया है, ये जुए के आलात ही में नहीं रही, जब जुए के आलात ही में शामिल नहीं है तो इस्लाम को सिर्फ इसके बोर्ड और इसके जो गोटियां वगैरह टाइप की चीजें होती हैं, इससे कोई इस्लाम को उससे कोई दुश्मनी नहीं है। मसलन मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, यानी वो ये फरमाते हैं अगर ये जुए के आलात में इस्तेमाल होने लगे तो जुए के आलात में इस्तेमाल होना हराम हो जाएगा। मसलन हमारे यहाँ लूडो खेलना बिल्कुल जायज है, वैसे आजकल एक वबा चली हुई इंटरनेट पे कि लूडो खेलना हराम है। नहीं, लूडो खेलना हराम नहीं, क्योंकि वो लोग कहते हैं क्योंकि इसमें छक्का इस्तेमाल होता है, इस्लाम को छक्के से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस्लाम को ही इसमें दिलचस्पी है कि इस छक्के के जरिए जुआ तो नहीं हो रहा है। मसलन अगर क्रिकेट के अंदर जुआ होने लगे तो क्रिकेट खेलना हराम हो जाएगा। शर्त लगाकर लोग मसलन कोई भी खेल खेलें, फुटबॉल जो टीम जीतेगी मसलन वो दूसरे को मसलन कोल्ड ड्रिंक पिलाएगी, आमतौर पर नौजवान बच्चों वगैरह के अंदर भी होता है, वो हराम हो जाएगा। तो ये हुक्म नहीं बदल रहा है, मौजू बदल रहा है। मौजू बदल रहा है तो उस मौजू के ऊपर जो हुक्म है वो भी बदल जाएगा, लेकिन इसको अहकाम की तब्दीली नहीं कहते। तो इसी तरीके से यही मैं आपको खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जगह के बदलने से जो है वो हुक्म तब्दील हो जाता है। तो अब बहरहाल नतीजा ये निकला कि तहकीक आपको खुद करनी, और मेयार गालिब उर्फ है, एक दो चार पांच दस आदमी नहीं, पूरे इलाके के अंदर देखा जाएगा, जिसका जिसके अंदर खुद उर्फ शिया भी शामिल है, यानी आवाम की गालिब अक्सरियत जिसको उर्फ साइद कहते हैं, आवाम की गालिब अक्सरियत वो अगर कह दे कि ये तौहीन मजहब है तो वहां पर हराम हो जाएगा, वो कहे तौहीन मजहब नहीं है वह जायज है, और जहां उर्फ दो में मुनकसिम हो जाए तो दीगर मराजे के मुकल्लिदीन के नजदीक ये चीज फिर भी जायज रहेगी। अच्छा, मसलन जैसे इसकी मिसाल दे दूं, जैसे मर्दों में होता है कि कितनी दाढ़ी मर्द रखें तो उर्फ दाढ़ी का तायुन करता है। मसलन उर्फ कहे कि हां आपके चेहरे पर दाढ़ी है तो उसे दाढ़ी समझा जाएगा, उर्फ ये कहे कि नहीं भाई ये तो शेव बड़ी हुई है दाढ़ी नहीं, तो फिर वो दाढ़ी शुमार नहीं होगी। और अगर उर्फ मुनकसिम हो जाए, कुछ कहें हाँ दाढ़ी है, कुछ कहें नहीं दाढ़ी नहीं, उतनी दाढ़ी फिर भी रखना जायज रहेगा, मर्दों के लिहाज से बात कर रहा हूं, तो उतनी दाढ़ी रखना उनके लिए जायज है उर्फ अगर मशकूक भी हो जाए। इसी तरीके से ये मसला खाली यहां नहीं आता, एक दफा अगर आपने मसले को समझ लिया इसके तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, जैसे गाने और मौसीकी का मसला हल हो जाएगा। यानी वो वाली मौसीकी और वो वाला गाना हराम है कि जो कि महफिल लहव व लाइब में आमतौर पर गुलूकार जो गले से आवाज निकालते हैं, या महफिल लहव व लाइब में जिस तरह की मौसीकी बजाई जाती, और वो आप जाकर पूछिए कि आम आवाम से कि ये जो आवाज आ रही है इसके अंदर से, यही वजह है कि बहुत सारे उलमा ने, अगरचे इसमें भी इख्तलाफ है कि कव्वाली को क्यों जायज करार दिया है। अच्छा, हो सकता है बाज़ औक़ात उसके अंदर आलात मौसीकी, अब इसमें मुज्तहिदीन के फतावों में बहुत इख्तलाफ है, फिलहाल चले मौसीकी वाले पार्ट को निकाल दें, गुलूकार जो कव्वाल है जो अपने हलक से जो आवाज निकाल रहा होता है, वो कहते हैं भाई ये तो अब कोई भी नहीं कहेगा कि ये लहब व लाइब की महफिलों में ऐसी आवाज नहीं निकाली जाती, तो कव्वाली बहुत सारे उनवान के तहत जायज हो सकती है। लेकिन मौसीकी वाले के अंदर, क्योंकि जो उसका पहलू है कि उसके हमारे सामने लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं, वो भी आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर गुनाह की महफिलों की तौर तरीके पर बजाए जाएं तो हराम हो जाएंगे, लेकिन आम तौर पर पुरानी टाइप की जो कव्वालियां होती हैं उसमें कोई जवाज का पहलू निकल सकता है, लेकिन आजकल जो पॉप किस्म के कव्वाल आ गए हैं वो तो पूरा लगता ही नहीं है कि ये कव्वाली है या कोई बाकायदा तौर पर कोई कॉन्सर्ट में जो गाने गाए जाते हैं उस तरह की कोई चीज है, तो वो उसमें हराम का पहलू आ सकता है। तो मसला ये होता है कि ये चीजें उर्फ के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी उनवाने सानवी का उनवान अगर सादिक ना आए, यानी तौहीन मजहब साबित ना हो, तो उनवाने अव्वल वापस आ जाएगा। उनवाने अव्वल क्या था, यानी असलन वो चीज हराम नहीं थी। देखिए बहुत फिक्री कवानीन है इसके अंदर, आपने कहा था ना कि जिस्म से देखिए खून निकालना हराम नहीं, ये उनवाने अव्वल है, उनवाने सानवी की बिना पर हराम है, क्योंकि तौहीन हो रही है, क्योंकि तुम्हारी जान जा रही है, तुम्हें काबिले जरर तकलीफ पहुंच रही है ना, जिससे तहम्मुल नहीं किया जा सकता, इस बिना पर हराम है। लेकिन वो चीजें दोनों शर्तें अगर खत्म हो जाएं तब भी हराम रहेगा, नहीं उनवाने अव्वल वापस आ जाएगा, यानी वो चीज असलन क्योंकि हलाल थी इस वजह से वो हलाल हो जाएगी, यानी जायज हो जाएगी, यानी ये उन मुज्तहिदीन का नजरिया है। अच्छा, अब उलमा की एक अच्छी बड़ी तादाद, यानी जो پاکستان کے رہبر کے مسئلے کو الگ کرتے ہوئے، جو دیگر مجتہدینوں نے عوام پر چھوڑا ہے، کیا پاکستان اور انڈیا میں توہین مذہب کا باعث ہے؟ کیا اگر کوئی شخص زنجیر اور قمازنی کرتا ہے تو یہاں کی غالب عوام کی اکثریت اس کو توہین مذہب شیعہ نہیں سمجھتی؟ ان کو بھی پتا ہے، یعنی جو غیر لوگ ہیں جو آپ کے جو اپنے اس سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا اگر آپ یہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات مجالس ہوتی ہیں، اگر عرف شیعہ کی بات کریں اور باقاعدہ نشتر پارک میں اگر مجلس ہو رہی ہو اور آپ وہاں پر ریفرنڈم کروائیں کہ آپ بتائیں کہ اس سے توہین مذہب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو آپ کے خیال میں کتنی بڑی تعداد ہوگی لوگوں کی جو یہ بات کہے گی کہ توہین ہے یا توہین نہیں ہے؟ یعنی زیادہ تر علماء جو یہاں پر ان سے نجی گفتگو میں بھی اس بات کا پوچھا گیا ہے تو کہتے ہیں عام عوام کی نگاہ میں یہاں پر، جس میں خود عرف شیعہ بھی شامل ہے، یہ توہین مذہب کی جگہ نہیں، یعنی یہاں پر توہین نہیں ہو رہی. لیکن رہبر معظم کا تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو پوری دنیا کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے مقلدین کے لیے جو ان کا فتویٰ ہے کہ توہین ہو یا نہ ہو بس ان کو نہیں کرنا ہے، لیکن جو دیگر مراجع کے مقلدین ہیں وہ خود دیکھیں اس کو. تو اس بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس بنیاد پر پاکستان اور انڈیا کے شیعوں کو وحشی، جنگلی یا بے شعور افراد قرار نہیں دیا گیا. سب کو پتا ہے کہ سارے لوگ نہیں کرتے، بلکہ اکثر میں نے پوچھا کہ پرسنٹیج کیا ہوگی، تو لوگوں نے کہا کہ پوری ٹوٹل شیعہ پاپولیشن کا 0.5% بھی شاید قمع زنی نہیں کرتا. اتنی کم تعداد میں لوگ کرتے ہیں اس کو. تو بہرحال اس کو کرنے کی وجہ سے مذہب شیعہ کی توہین کا باعث نہیں. تو اچھا دیکھیں، لیکن ہر شخص اس میں خود تحقیق کرے گا اور اپنے مطابق حکم لگائے گا. جیسے عید اور رمضان کے چاند کی تحقیق کرنا مکلف کی خود کی ذمہ داری، وہ خود تحقیق کرے، لیکن اپنی جو تحقیق ہو جائے، جیسے اکثر نوجوان ہوتے ہیں ان کے نزدیک چاند ثابت ہو گیا، اب موٹر سائیکل لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ہر شخص کو مجبور کرتے ہیں، بھائی کل عید ہے، ہر صورت اس کے نزدیک نہیں ثابت ہو رہا، اسے اطمینان نہیں ہو رہا آپ کی بات پر، آپ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو اپنی بات کو ابھی میں آخر میں جب ختم ہوگا آئندہ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے آخر میں پیش بھی کروں گا کہ اس میں مکلف کی ذمہ داری کیا ہوتی، کیا اسے امر بالمعروف کرنا بھی واجب ہے یا بلا وجہ اپنی ذمہ داری اسے سمجھا ہوا اس کو. اچھا پھر ایک اعتراض اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس عمل کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر. اگر یہ دلیل آپ دیں گے کہ یہ اس سے تمسخر کا باعث ہو رہا ہے تو پھر اور مشکل ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس پہ عام عوام جو ہے وہ تمسخر اڑاتی. مثلا آپ جو چیخ چیخ کر روتے ہیں اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس پہ کتنی ویڈیوز، مثلا ایک آیت اللہ باقر الحکیم کی ویڈیو ہے جس جگہ بھی جو اپلوڈ ہوتی ہے، کتنے غیر افراد ایسے ہیں یعنی جو مذہب شیعہ سے ہٹ کر جو دیگر مسلمان ہیں، اس کا بے تحاشا ان کی ویڈیو کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے جس میں انہوں نے جیسے کہ مولانا محمد علی نقوی صاحب نے پچھلی دفعہ شاید اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہ انہوں نے امامہ اتار کے پھینک دیا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تو بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. تو کیا فقط تمسخر کے باعث آپ بہت سارے جو اپنے شاعر ہیں یا رسومات عزاداری ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ بہت سے لوگ آپ کے زور زور سے رونے کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے ماتم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو جیسے کہ آیت اللہ بہجت سے بھی پوچھا گیا کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ مختلف جو شاعر حسینی ہیں اور ان کی اقسام ہیں، اس میں دشمن ہمارا مذاق اڑاتے ہیں اور مسخرہ کرتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بہت سے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، انہیں چھوڑ دیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ این حرف ہا اعتبار نہ دارت، ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. اس طرح تو انہوں نے کہا کافر بھی ہماری بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے اعمال حج کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھا چلیں، وہ کہیں گے واجبات والا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن بہت سی چیزوں میں واقعتاً مذاق ہوتا ہے کہ جناب غلطی آپ کرتے ہیں اور چھری بکرے کے گردن پہ چل رہی ہوتی ہے کفارے کے طور پر. کہتے ہیں نا حج میں غلطیاں کریں تو کفارہ دینا پڑتا ہے، تو اپنی انگلی کاٹیے، اپنی کسی چیز کو کاٹیے، بکرے کے نے کیا غلطی کی ہے کہ اس کی گردن پہ چھری چلائے جا رہے ہیں؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو تمسخر، اچھا دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تمسخر، مثلا آپ کے ہاتھ کا ماتم جو ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کا بھی تمسخر اڑاتے ہیں. اگر آپ فقط یہ کہیں کہ تمسخر کی وجہ سے حرام قرار دینا چاہیے اس کو، تو ہاتھ کے ماتم کو بھی بند کرنا پڑے گا، بلند آواز سے رونے کو بھی بند کرنا پڑے گا. अच्छा, बहुत से लोग जिस्म पे कीचड़ वगैरह मलते हैं, चलें वो तो उसको अक्सर उलमा ने इतना पसंदीदा नहीं समझा, लेकिन कुछ खाक आलूद करते हैं अपने जिस्म को आशूरे के रोज, उनका भी मजाक मत उड़ाइएगा। वो बाकायदा उसकी भी वजूहात हैं। बाकायदा आयतुल्ला बुरुजर्दी की जब आंखें बहुत दुखने आई थी और खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो ये आजादारों का एक ग्रुप बाकायदा जो सादात के दस्तों पर मुश्तमिल होता था, वो उनके घर आता था आजादारी के लिए, और वो अपने आप को खाक आलूद करते थे पूरा। तो आगाए आयतुल्ला बुरुजर्दी ने उनके कदमों की खाक लेके आंखों पे लगाई थी, और उसके बाद हमेशा के लिए कहते हैं उसके बाद मुझे आंखों का कोई आरजा लाहक नहीं हुआ था। और इसी तरीके से अपने जिस्म को गुबार आलूद करना, बाकायदा रिवायात के अंदर, यह अहले सुन्नत की भी बेशुमार रिवायतों में और हमारे भी, कि उम्मे सलमा फरमाती हैं कि वो गिरिया और बुका कर रही थी हजरत उम्मे सलमा, तो सलमा जो खातून है उन्होंने आकर पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, तो ज़ौजा रसूल उम्मे सलमा ने कहा अभी अभी ख्वाब में मैंने रसूल अल्लाह को देखा है कि आपके सर और दाढ़ी के बाल मिट्टी से भरे हुए हैं। मैंने सवाल किया या रसूल अल्लाह आपको क्या हो गया है, आपने फरमाया अभी अभी हुसैन को कत्ल होते हुए देखा। तो पैगंबर इस्लाम का ख्वाब में आना, बिल्कुल ये हमारे उलमा ने भी अपनी, शेख बहरानी ने अपनी, बहरानी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, इसके अलावा अहले सुन्नत की मुसलसल कितनी ही किताबों के अंदर ये रिवायत। तो अगर जिस्म पे कोई खाक आलूद करता है तो आम तौर पर ये अब नौजवानों में हो गया है कि बहुत सारे शायर का मजाक उड़ाने लगे, यानी जो जिसकी रहबर मौजम ने भी इजाजत दी है, जायज करार दिया है, उनका भी मजाक उड़ाने लगे हैं। तो यहां तक बात नहीं जानी चाहिए। खैर, तो कितनी ऐसी चीजें हैं जिसपे वो आपका मजाक उड़ाते हैं, मसलन आपके ताजियों वगैरह का मजाक उड़ाते हैं, वो आपके मसलन जुलजना वगैरह जो आपके, अब कुछ तो अफराद तो ऐसे हैं कि जो जुलजना को यानी बाकायदा तौर पर मानते ही हैं, बतौर शबी खुद आपके अंदर पैदा हो गए हैं ऐसे, जो इसको मुतबरक या मसलन कोई काबिल एहतराम चीज नहीं समझते, तो लेकिन उनसे तो हमारा खिताब नहीं, लेकिन जो इसको मोहतरम समझते हैं अहले सुन्नत हजरात, इसका भी तमस्खुर उड़ाते हैं। आपके अलमों का भी तमस्खुर उड़ाया जाता है बहुत सारी जगहों पे कि भाई ये क्या है, बहुत से कहते हैं क्या मसलन आपने जो है इस तरह के अलम लेकर जो चलते हैं, यानी वो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते, तो उनकी अगर निगाह से देखें तो बहुत मसाइल हो जाएंगे। वो आपकी इस जंजीर जनी का जिसमें फल नहीं होते, इसका भी मजाक उड़ाते हैं, इसकी करने की क्या जरूरत है, और तमस्खुर तो इसको भी फिर बंद कर देना चाहिए। तो यानी तमस्खुर वाली जो चीजें हैं, तो देखिए यही वजह है कि आयतुल्ला शेख जव्वाद तबरेजी से एक दफा पूछा गया था कि बहुत सारे आजकल इस तरह के रोजे नुमा जो है शबीहें पाकिस्तान में भी बनने लगे, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, रोजे उसको देख के लोगों को इमाम हुसैन का रोजा याद आता है, हजरत अब्बास का, और उनकी शबीहें बनाते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि उन तमाम का भी एहतराम इसी तरह से करें इस तरह असल रोजे का एहतराम होता है, शबी का एहतराम भी ऐसे ही एहतराम। तो ये तमाम जो शबी हैं हमारे यहां, इससे इमाम हुसैन की याद आती है, इनका एक खास एहतराम है मजहब के अंदर, तो उनका मजाक उड़ाना, तो गैर तो उसका मजाक उड़ाएंगे लेकिन इसी वजह से हम अपनी जायज चीजें नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं चीजें, जैसे एक लोग जो इसकी हिमायत में वो एक एतराज करते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इन चीजों की तस्वीर और वीडियोज की तशहीर अगर हो रही है, तौहीन हो रही है मजहब की, अगर इंटरनेट पे डाल रहे हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा आजकल हमारे नौजवान करने लगे हैं। देखिए वो अफराद के जो कहते हैं तौहीन ही, उनके मुताबिक तो जितना भी डालिए डालिए, लेकिन जब खुद रहबर ने कहा है कि इससे तौहीन हो रही है क्योंकि इसकी तशहीर इंटरनेट और मीडिया वगैरह के ऊपर लोग कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे अपने अफराद ये काम क्यों कर रहे हैं। मसलन आजकल ये बहुत होने लगा कि पोस्ट बनाई जिसके अंदर बहुत ज्यादा सर से खून निकल रहा है, देखिए कैसा वहशियाना अमल है रहबर, भाई आप खुद तशहीर कर रहे हैं, लाखों अफराद तक ये बात जा रही है क्योंकि आप इसके कायल हैं कि ये अमल हराम है, तो इसकी तशहीर करना भी आपके लिए जायज नहीं। आप वैसे अगर किसी को कायल करना है, फतवा कोट करना है, तो आप तहरीर के अंदर कर दें, लेकिन तस्वीर के जरिए, क्योंकि आपका खुद का ये नजरिया है, यानी जो भी उनकी रहबर मौजम की तकलीद में, तो उसको इस काम से एतराज करना चाहिए। तो ये बहुत सारी इसके अंदर इस तरह की बातें हैं जिसका आमतौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो उलमा ये कहते हैं और लोग जो आमतौर पर जितने भी इनसे बात हुई है कि इन इसके बावजूद भी कितनी सदियों के साथ सदियों से ये अमल हो रहा है, लेकिन फकत इस बुनियाद पर कि हम कमजनी या जंजीर जनी करते हैं। खुद मजहब शिया को कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि वहशियों का मजहब है, ये जंगलियों का मजहब है, بلکہ ہر جگہ ایک پورا امن مذہب کے طور پر ہمارے مذہب کو لیا جاتا ہے، بلکہ ہمیں ایک مظلوم مذہب سمجھا جاتا ہے، نہ صرف ایک وحشی نہیں سمجھا جاتا بلکہ مظلوم سمجھا جاتا ہے. تو فتاوے کا ایک الگ رینک ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ہمیں خود سے کوئی دلائل کریٹ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر کریٹ کرتے ہیں تو دوسری طرف سے بھی اس کے برخلاف جو ہوتے ہیں وہ اس کے دلائل دیتے ہیں، پھر آپ ان کو دلائل دیتے ہیں، پھر وہ جواب الجواب ہوتا ہے، آپ کسی کی رد کرتے ہیں تو اس کا رد الرد آ جاتا ہے، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد اس کو نہیں بننا چاہیے. رہبر کا کیونکہ فتویٰ ہے، ان کے مقلدین کو اس کی پاسداری کرنا ہے. اچھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں ابھی پھر بات آئی، دوبارہ آ رہی ہے کہ احتمال ضرر، نقصان پہنچنے کا احتمال تو یہ ہے. تو دیکھیے اس کی بھی لوگوں نے پھر آپ جو بحثیں ہوتی ہیں وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو کسی خاتون کے لیے واجب نہیں ہے کہ مثلا وہ اولاد پیدا کرے، کیونکہ اس کے اندر خطرات ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں باقاعدہ سٹیٹسٹکس نکلوا کر کہ جناب ایک اینول جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہمارے ہاں کہلاتا ہے، کتنی عورتیں جو روزانہ اس کے روزانہ کی بنیاد پر مرتی ہیں، اور ادھر آپ اخبارات میں پڑھتی ہیں ہر سیکنڈ اس پریگنینسی وغیرہ کے نتیجے کے اندر اور وضع حمل کے نتیجے میں جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ہوتا ہے، اور وہ تعداد یہ تو پھر بھی ذرا پچھلے سالوں کا ہے، وہ تعداد مسلسل بڑھتی بھی جا رہی ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اگر صرف احتمال ہے تو اس کے اندر تو بہت ہی احتمال ہے، اور واجب بھی نہیں کہ مثلا انسان اولاد پیدا کرے، تو اس احتمال کی وجہ سے پھر جو ہے یہ والا سلسلہ بھی موقوف ہو جانا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں. اسی طریقے سے کتنے ہی دیکھیے کہا جاتا ہے نا، کتنے کھیل ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ خود نکالیں کہ کتنے کھلاڑی ایسے ہیں جو میدان کے اندر ہی جن کا انتقال ہو گیا دوران کھیل. فٹ بال کے کتنے کھلاڑی اگر آپ دیکھیں کہ جناب وہ کھیلتے کھیلتے ان کو دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے، اور ایک دم سے فالج ہوا اور انتقال کر گئے، بھرا پڑا ہے اس کے اندر. یہ بھی کھیل آرام ہو جانے چاہیے کیونکہ اس میں احتمال تو ہے نقصان ہونے کا، کتنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. اسی طریقے سے کتنے کوہ پیما ایسے ہیں کہ جو کہ کوہ پیمائی کے لیے جاتے ہیں، روزانہ ہر ہفتے 15 دن میں کم سے کم ایک خبر آپ کو اخبارات کے اندر میں مل جاتی ہے کہ وہ خراب موسم کی وجہ سے مر گئے، وہاں سے پھسل کے گر کے مر گئے. کتنوں کی فراسٹ بائٹس ہو جاتی ہیں، اور اس کے ان کے اعضا جو ہے وغیرہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے وہاں پر، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کو حرام قرار نہیں دیا جاتا. لہذا فقط غلط دلائل ہمیں نہیں دینے ہیں، اور صرف مرجع کا صحیح فتویٰ وہ کوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں جو میں نے وہ شروع میں بات کہی تھی نا کہ دلائل دینے کا کام مقلدین نے ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور وہ غلط دلائل دے رہے ہیں، تو غلط یہ تمام یہ سب غلط دلائل سے کوئی بھی مجتہد بھی نہیں مانتا، حتیٰ کہ جو حرام کہتے ہیں وہ بھی ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ والی چیزیں اس کے اندر نہیں لانی چاہیے. اچھا، اب لوگ اسی متعلق آپس میں جو ہے بہت زیادہ ان کی لڑائیاں بھی ہونے لگی ہیں، مختلف چیزیں. اچھا، اب ایک چیز اور آتی ہے کہ یہ جو عمل قمع زنی ہے یہ آئمہ کے ادوار میں نہیں تھا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بتائیے اس کی تاریخ ہے، کب سے شروع ہوا. آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تھا قمع زنی کی تاریخ بتائیے، تو انہوں نے قصولی ٹائپ کا جواب دیا کہ حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے کسی چیز کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری نہیں. یعنی تاریخ سے کیا آپ کو کرنا ہے، ہم اس کے بغیر بھی حکم شریعت کا تعین کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اور ذرائع ہیں. ہمیں تاریخ میں نہیں دیکھنا پڑے گا، کوئی چیز بہت بعد میں شروع ہوئی تو وہ جائز نہیں ہوگی، کوئی چیز بہت پہلے شروع ہوئی یا ائمہ کے ادوار میں تھی تو جائز ہوگی. یہ اچھا، اس کی بہت ساری مثالیں میں قمع زنی اور اس کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، لیکن عام طور پر یہ دلیل اتنی زیادہ مؤثر نہیں. وجہ اس کی کتنی چیزیں ایسی ہیں، دیکھیے مثلا یوم القدس، امام خمینی نے باقاعدہ اس کی تاکیدی ایک اس کی بہت تاکید کی کہ یوم القدس منانا چاہیے. اچھا، تھوڑا سا اس کے اندر ایک فقہی باریکی کے طور پر میں ایک چیز بیان کر دوں، رہبر معظم کے نزدیک بھی اور امام خمینی کے نزدیک بھی یوم القدس منانا واجب نہیں. واجب سے مراد ہے کہ انہوں نے حکم جاری کیا ہو کہ مناؤ، نہیں، یہ بہت بات مشہور ہوئی ہے، لیکن انہوں نے بہت تاکید کی، سارے مجتہدین کی بہت تاکید ہے کہ یوم القدس منانا چاہیے، یعنی واقعی جس میں اور پوری طاقت کے ساتھ منایا بھی جاتا ہے الحمدللہ، لیکن ایک فقہی کریکشن ہو جائے، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کا انہوں نے جس طرح باقاعدہ حکم جاری کرنا ہوتا ہے ایسا حکم جو فقہی حکم ہوتا ہے وہ جاری نہیں کیا، और वाजिब भी उस तरफ बहुत जरूरी करार दिए, जरूरी से मुराद ये कि वाजिब करार नहीं दिए लेकिन कहा ताकीद की, बहुत ताकीद की लेकिन वाजिब नहीं। तो ये आइम्मा के अदवार में भी नहीं होता था, लेकिन ये बात की तो आप ये दलील नहीं बना सकते। अय्याम फातिमिया है वो अब उससे कुछ अरसे पहले मनाने शुरू हुए कि जो दो महीनों के अंदर छह दिन जो होते हैं उनको अय्याम फातिमिया के तौर पर मनाया जाए। अभी आप अरबईन में आप देखेंगे कि नजफ से करबला पैदल चलकर जाना, ये कब आइम्मा के अदवार में इस तरह से होता था, लेकिन उसके बाद के उलमा ने इसको राइज किया। तो ये जरूरी नहीं कि कोई भी रिचुअल या जो कोई भी इस तरह से है वो हमेशा से चला आ रहा हो तो फिर आप उसे कहेंगे कि चीज जायज होगी। अच्छा, इस बात को वैसे तो एक नजरिया अपनी जगह पर है और मराजे का है कि ये अमल आइम्मा के अदवार में नहीं था, वो उनके बिल्कुल अदब एहतराम सबके साथ उनके पास अपने जो है वो दलील है कि वो इसको जरूरी समझते हैं कि उस अमल को आइम्मा के अदवार में होना चाहिए। लेकिन इसके बरखिलाफ दीगर मराजे भी हैं जो एक बात कहते हैं, जैसे शेख जवाद तबरेजी, वो कहते हैं कि बाकायदा उनकी किताब है अनवारुल इलाहिया, अल अनवारुल इलाहिया फी मसाइल इतिकादिया, उसमें उनसे यही चीज पूछी गई है कि आपकी क्या राय है शायर हुसैनी के मुतालिक, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जो इसको रद्द करते हैं वो ये कहते हैं कि कितनी ही रसूमात हमारी ऐसी जो अहदे आइम्मा में नहीं पाई जाती थी, इस वजह से वो जायज नहीं। तो इस पे उन्होंने जवाब दिया शेख जवाद तबरेजी ने कि अहदे आइम्मा में बहुत ही ज्यादा तकये का दौर था और उस जमाने में जितना लोग इजहार कर सकते थे रसूमात का उतना इजहार करते थे, और उस जमाने में बहुत से शायर का ना पाए जाना इस बात की दलील नहीं कि इस जमाने में भी काम हराम है। देखिए बाकायदा उलमा में इसके अंदर एक वो भी पाई जाती है, ये दलील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा क्योंकि बहुत ज्यादा उस जमाने के, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे फिर तकिया रिलैक्स होता गया वैसे वैसे शायर हुसैनी मंजरेआम पे आएंगे, लोगों ने अपने हुसैनियात और इमाम बारगाहों और घरों के दरवाजों के ऊपर काले अलम लगाने शुरू किए और उस तरह मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिर उसके अंदर इजहार हुजून जो है पैदा होता चला गया और लोग मुख्तलिफ तरीकों से उसका इजहार करने लगे। लेकिन आइम्मा के अदवार के अंदर सख्त तरीन तकिया पाया जाता था, इस वजह से बहुत सारी चीजें नहीं आ पाई। इसी तरीके से आयतुल्ला हुसैन शाहरुदी ने भी बाकायदा उनसे भी बिल्कुल ये वाला सवाल किया गया और कि जनाब शायर हुसैनी के मुतालिक आप क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइम्मा के जमाने में शायर मौजूद नहीं थे लिहाजा ये मशरूयत नहीं रखती, ये चीजें शरई तौर पर जायज नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि फर्ज किया जाए कि आइम्मा के जमाने में शायर हुसैनी आजादारी नहीं थी तो ये कहा जा सकता है कि वह हजरात उस जमाने में सख्त तकये के आलम में थे और अलल ऐलान इस किस्म की मजाली से आजादारी मुनक़िद करना भी मुमकिन नहीं था, बहुत मख्फी और पोशीदा तौर पर होती थी। और फिर आगे उन्होंने लिखा है कि यहां तक नौबत आ गई थी कि आइम्मा के जो मजारात हैं और रोजे उनको भी ढाने की तैयारियां होने लगी थी, लिहाजा उन्होंने लिखा है दुश्मनों की तरफ से शदीद दबाव आजादारी इमाम हुसैन के जाहिर और आशकार होने में माने रहा है। तो सिर्फ ये दलील बनाना कि उस जमाने में नहीं होता था, इसे अक्सर उलमा ने कबूल नहीं किया है। और फिर आगे चलकर आयतुल्ला हुसैन शाहरुद्दीन ने अपने एक और फतवे के अंदर भी इसको बयान किया है कि कितनी चीजें ऐसी जो तारीख में हमें नहीं मिलती हैं। मसलन मिलता है तारीख के अंदर कि सिर्फ गनाइम जो होते थे, जो जंगों के अंदर माले गनीमत होता था, सिर्फ उस पर से रसूल खुम्स लिया करते थे, लेकिन हर बचत पे जिस तरह से आजकल माशरे के अंदर है कि हर बचत के ऊपर खुम्स लिया जाता है, अगरचे शरई हुक्म के तौर पर साबित है ये चीज, लेकिन पैगंबर की जिंदगी में नहीं मिलता इतना। क्योंकि पैगंबर बहुत सी वजूहत से, लोग कहते कि पैगंबर हमारी हर बचत के अंदर अपना पैगंबर को, हमारी पूरी गुफ्तगू हो चुकी है, उलमा ने लिखा है कि पैगंबर शर्मिंदगी महसूस करते थे और जकात हर एक से ली जाती थी, बाकायदा अपने उम्माल भेज के जकात लेते थे कि उसमें गरीबों का हक था, लेकिन क्योंकि इसमें पैगंबर के अपने खानदान का हक था तो पैगंबर इस तरह से जोर जबरदस्ती करके नहीं लेते थे और रिवायात में उसका ज्यादा तस्करा नहीं आया। तस्करा नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज आइम्मा के अदवार में हमें ज्यादा नहीं मिली, रसूल के अदवार में ज्यादा नहीं मिली तो चीज नाजायज है, नहीं जायज है लेकिन बहुत कम होने की वजह से नजर नहीं आ रही। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें जो हैं वो कही जाती हैं। तो उलमा यही कहते हैं कि अगर आप उस लिहाज से देखें कि अगर आप इसको दलील बना लें कि बस फकत आइम्मा के अदवार में जिस तरह से आजादारी होती थी, आजकल होता है बहुत से साहिबान इल्म के जुबानों के ऊपर भी ये चीज आई है कि बस जैसे होता था उससे सरे मुंह फर्क नहीं करना चाहिए, दो सेंचुरीज जब इस तरह से हुआ है तो वैसे ही होना चाहिए, तो आइम्मा के अदवार में इस तरह से जलूस लेकर निकला भी नहीं जाता था। तो इसका मतलब है कि जलूस भी निकालने जायज नहीं। कब औरतें मर्द बच्चे आइमा के अदवार में हर साल की बुनियाद पर रोडों के ऊपर निकलते हैं और शायराओं के ऊपर निकलते हैं, ऐसा नहीं होता था। अच्छा, इसी तरह से कब उस जमाने में जुलझना वगैरह और ये सब कुछ चले, वो जो इसके खिलाफ है वो तो एक अलग है, लेकिन जो इसकी हिमायत में भी है तो उस जमाने में जो जायज भी करार देते हैं, तो आइमा के अदवार में तो इस तरह से जुलझना लेकर निकलना ये भी नहीं हुआ करता था। अच्छा, आइमा के अदवार में ये वाली जंजीर जनी भी कब होती थी जिसमें फल नहीं होता चले? अगर हम कहें कि सिर्फ आइमा के अदवार वाली अजादारी करनी है तो इसको भी बंद करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से आइमा के अदवार में, अब तो खैर ये ईरान में कुछ जगहों पर शुरू हुआ है, लेकिन एक आध का हुक्म नहीं बनाना चाहिए हर जगह, क्योंकि हर जगह नहीं लेकिन खवातीन भी ये वाली जंजीर जनी करने लगी। लेकिन चले एक आध की बात नहीं, हर जगह ऐसा नहीं। इसी तरीके से मसलन सब लोग जमा होके हाथ से इस तरह के जोर जोर का मातम करें, ये भी आइमा के द्वार में नहीं था। अच्छा, ईरान में मुख्तलिफ मातमों के तरीके हैं, लोग एक दूसरे की कमर पकड़ के और दायरे के अंदर घूम घूम के मसलन मातम कर रहे होते हैं, ये भी आइमा के द्वार में तो ऐसा मातम नहीं होता था, इसको भी फिर नाजायज कहना चाहिए। इसी तरीके से मसलन कुछ लोग बहुत झुक झुक के फिर उठ के फिर झुक के इस तरह से मातम करते हैं, मातमों के मुख्तलिफ स्टाइल है। कुछ लोग तकरीबन दौड़ दौड़ के मातम करते हैं, ईरान के अंदर ये भी बहुत राइज है, लेकिन ये भी आइमा के अदवार में इस तरह से कोई मातम हमें नजर नहीं आता। कुछ तो हमें बाकायदा ऐसा लग रहा होता है माजल्ला के जैसे ये बिल्कुल एक रक्स की सी कैफियत हो जाती है, लेकिन बहरहाल वहां किसी ने भी इसको हराम करार नहीं दिया और मज़ाहिर हुज़्न में से और एक गम के उसमें तौर पर इसको करार दिया जाता है। अफगानिस्तान में बैठकर जोर जोर से इस अंदाज से मातम करते हैं, और बहुत से तो इस तरह के भी होते हैं कि मर्द अपनी पूरी कमीज नहीं उतारते हैं और सिर्फ मातम वाली जगह को काट के सिर्फ उतना जिस्म नजर आ रहा होता है जहां हाथ पड़ता है उनका, जिस यानी जिस्म में बाकायदा सुराख एक लिहाज से उनकी शर्ट्स में होते हैं और उस जगह पे मातम करते हैं, ये भी आइमा के अदवार में नहीं था। बाकायदा लोग अतराफ में बैठते हैं, बीच में लोग जंजीर का मातम कर रहे होते हैं। तो अगर हम अगर सिर्फ इसको एक असूल बना लें कि बस जैसी वो हो वैसी हमें आजादारी करनी है, तो फिर बहुत सारे उन मुबाह और जायज चीजों को भी आपको तर्क करना पड़ेगा कि जो कि जिसके सब हद तक रहबर मौजम भी कायल हैं कि सही है उनको अंजाम देना। अच्छा, खुद ईरान के बहुत सारी चीजें देखिए, यहां पर वो चीज आएगी शबी खवानी जिसको कहा जाता है, यानी बाकायदा एक स्टेज प्ले किया जाता है ईरान में भी और अरब दुनिया में भी, कि बाकायदा उसका पूरा वाक करबला किया जाता है। ये अभी तक पाकिस्तान में अगर हो तो शायद यहां तौहीन मजहब का वाइस बन जाए, लेकिन वहां इतना राइज है कि वहां तौहीन मजहब शुमार नहीं होता। यहां अगर करें तो लोग बहुत मायूब समझेंगे इसको। मसलन आइमा की तस्वीर ईरान इराक में कितनी कॉमन है, घरों घरों के अंदर लोगों के लगी होती है, आइमा 12 इमाम बैठे हैं उनकी तस्वीरें। ठीक है कि वो इतना ज्यादा पसंदीदा नहीं है उलमा के नजदीक वो भी, लेकिन बहरहाल हराम किसी ने करार नहीं दिया उसको भी, लेकिन वही तस्वीर यहां पर आ जाए यहां लोग बहुत बुरा मानते हैं उसका। तो शबी खवानी अगर तौहीन मजहब वाली बातें इसके अंदर ना हो तो इसको भी सबने जायज करार दिया है, हत्ता के खुद रहबर मौजम ने भी जायज करार दिया, लेकिन तौहीन मजहब का पहलू नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं क्योंकि वहां पर तौहीन मजहब नहीं है लिहाजा वहां कानूनन भी इसको मना नहीं किया गया, और बाकायदा कि बीबियों को किस तरीके से कि उसकी छवि पूरी बनाई जाती है, पूरा स्टेज प्ले किया जाता है कि वाकई करबला किस तरह से हुआ था, जो हमें बहुत यहां पर मायूब और अजीब लगता है लेकिन वहां पर बहुत कॉमन है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारे यहां भी कुछ ही दिन पहले एक अंदरून सिंध में किसी जगह इसी तरह से लोग बैंड बजा रहे थे और मातम हो रहा था, बहुत एतराज लोगों ने इस पर किया था, क्योंकि यहां के उर्फ और माशरा जो है उसको तस्लीम नहीं करता, उसे तौहीन आजादारी समझता है। तो शायद ये बैंड बाजे और इस तरह की चीजें अगर ये आजादारी वहां पर, लेकिन बिल्कुल कॉमन है, ईरान के अंदर बहुत कॉमन है, इराक के अंदर बहुत कॉमन है, हर जगह के ऊपर बहुत कॉमन है, और बाकायदा लोग इस तरह से लेकर उसी की बीट के ऊपर उसके साथ साथ मातम करते हैं। वहां पर तौहीन मजहब नहीं है, ना उसके मसादिक में से ना उसके खिलाफ किसी का भी फतवा है, लिहाजा इसकी इजाजत है और अलग से भी इजाजत। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे आइमा के अदवार में कब होता था कि लोग सारे अपने मर्द हजरात अपनी कमीज उतार के ऊपरी लिबास उतार के मातम करें, आगे सिस्तानी से पूछा गया, उन्होंने कहा जायज है, हत्ता कि मस्जिद तक के अंदर नंगे बदन से करना वो भी जायज है मर्दों के लिए। तो अगर चाहे आइमा के अदवार में नहीं था तो आइमा के अदवार में होना जरूरी नहीं है, देखा जाएगा कि जायज है या नहीं। जैसे आगे सिस्तानी से पूछा गया मातमी दस्तों के आगे चहल चिराग रखना कैसा, 40 चिराग, ये आमतौर पर आपने बहुत देखा होगा इराक के अंदर, बहुत अरब दुनिया के अंदर होता है कि 40 चिराग, या मसलन हो सकता है ईरान में भी होता हो, 40 चिराग आगे चल के लेकर साथ चल रहे, ये भी आइमा के अदवार में नहीं था, लेकिन मुबारस में और इनकी मुस्तहिदीन ने इजाजत दी। इमाम अयतुल्ला सिस्तानी से पूछा कि मुहर्रम में आशूरा के रोज बास खवातीन अपने बालों को नोचती, क्या ये जायज है और क्या इस पर कोई कफारा होता है? तो जवाब वहां से आया कि ऐसा करना जायज है और उस पर कोई कफारा भी नहीं। और बाकायदा कुछ रिवायतों में आया भी है कि खानदान अहले बैत की खवातीन ने बाकायदा अपने चेहरों को पे खराशे भी डाली हैं और गरेबान भी चाक किए हैं और चेहरों को पीटा भी है, और तो उसको उस लिहाज से शरीयत के लिहाज से भी उसकी इजाजत है। अच्छा, अहले बैत की महाफिल, विलादत की महाफिल में तालियां बजाना, कि ईरान से जब कोई वीडियो आती है यहां वाले लोग बहुत उसको बुरा मानते हैं, हमारे यहां अभी तक राइज नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें वाकईतन ऐसी राइज नहीं है। एक वीडियो आपको अगर मैं दिखाऊं, अभी तो खैर आज मैं शायद नहीं लाया, लेकिन मसलन जितने अभी अफराद बैठे खवातीन यहां पर बैठी हूं, अगर सब ये एक सबको मैं मजलिस पढ़ रहा हूं और सब लोग बैठी हुक्का पी रही हूं अगर यहां पर, तो कैसे कितना बुरा लगेगा। अरब दुनिया में मायूब नहीं है, मजालिस के दौरान लोग बैठ के हुक्का और सिगरेट वगैरह पीते हैं, आपको कितना बुरा लगेगा। यानी हमारे यहां तो अगर कोई ऐसा कर ले, मस्जिद में भी सिगरेट पीता हुआ कोई आदमी नजर आ जाए तो बहुत मायूब समझते हैं उसको, लेकिन वहां पर नहीं, उर्फ अलग अलग है। क्योंकि जैसे एक दफा मैंने पहले भी जो क्लास, आप तो खैर बिल्कुल नए आए हैं, तो पिछली रेगुलर क्लासेस में मिसाल दी थी शाम सीरिया, वहां पे बेटी और बाप एक साथ बैठ के सिगरेट पीते हैं ड्राइंग रूम में मसलन, कितने। हाँ, तो अगर बेटा जो है वो 60 साल का है, अब्बा 80 साल के हैं उसके, तब भी वो 60 साल का बेटा अब्बा के सामने सिगरेट नहीं पिएगा, उसे तोहनी लगेगा अब्बा की। लेकिन क्या है कि वहां पर तो उर्फ के बदलने से बहुत सारी चीजों के अंदर फर्क पड़ जाता है। तो वहां पे अहले बैत की विलादत की उसमें सब लोग कसीदा पढ़ रहे हैं, उसके बाद तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजाना जायज करार दिया, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर। लेकिन क्या है कि बहरहाल यहां पे, और आयतुल्ला खामनेई ने बाकायदा इस पर अलग से उनकी leader.ir जो वेबसाइट पे जाकर देखी उस आजादारी की, उसमें सेक्शन में कि आजादारी में ढोल दफ और बाजा अगर मुतारिफ तरीके से बजा जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो अगर मसलन ये कहा जाए कि बहुत सारी रसूमात ऐसी हैं, रहबर मौजन ने भी देखी इसको जायज करार दिया कि मुबा रस्में हैं, तो अगर आप वो दलील लेके आएंगे कि आइम्मा के अदवार में नहीं था, तो ये सब आइम्मा के अदवार में सब भी चीजें नहीं थी। लेकिन उसमें खास कमाजनी के मसले में उन्होंने अलग से एक खसूसियत के साथ हुक्म दिया, लेकिन बाकी जितनी मरासिम अजा हैं उनका न सिर्फ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि वो उर्फ के ऊपर देखा जाएगा कि कौन सी चीजें किस माहौल और माशरे के लिहाज से जायज है और किस जगह जायज नहीं। और अगर मसलन रहबर मौजम से ही पूछा जाए इसी में ही कि आप जो कह रहे हैं ढोल दफ और बाजा बजाने की इसमें इजाजत है, पाकिस्तान के माशरे में इससे तौहीन मजहब होती है, लिख के मंगवाई, वहां से जवाब आएगा कि हराम है। क्योंकि ये तौहीन मजहब जगह के एतबार से, मुकाम के एतबार से, हो सकता है पाकिस्तान में एक जगह जायज हो और दूसरी जगह हराम हो जाए, क्योंकि उर्फ बदल जाता है, उर्फ बदल जाता है तो मौजू बदल जाता है, मौजू बदलता है तो उसका हुक्म भी बदल जाता है। ये हुआ। अच्छा, इसी तरीके से बाकायदा पैसे निछावर करना, कि आइम्मा की विलादत और ईद बेसत पर ऐसे मरसिया और कसीदे पढ़ने का जो सामईन के लिए गिरिए का सबब हो, या हाजरीन पर पैसे निछावर करने का क्या हुक्म है? तो रहबर मौजम ने कहा कि दीनी ईदों की महफिल में मरासी और कसीदे पढ़ना ये जायज है, और इस तरह माल निछावर करना भी जायज है, बल्कि मोमिनीन के दिलों में अगर खुशहाली और फरत और सुरूर के इजहार की खातिर हो तो सवाब का बाइस भी है। अब कोई कहे कि भाई कब बताइए आइमा के द्वार में कब महफिल मिलाद के अंदर पैसे लोगों पर निछावर किए जाते थे, इसके लिए कोई हदीस होना चाहिए और हदीस जो है बिल्कुल मुस्तनद और मुतवातिर होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा। उसके लिए मुबाहत के लिए उस अंदाज की दलीलों की जरूरत नहीं पेश आती है कि जिस तरह से लोग आमतौर पर डिमांड करते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे अफराद इसमें एक बात और भी कहते हैं, वो ये है कि किस इमाम ने ऐसा किया, और आपको ज्यादा मोहब्बत है इमाम से, ये भी इतना अच्छी दलील नहीं है किसी को कायल करने के लिए, क्योंकि अगर आइम्मा को ज्यादा मोहब्बत थी तो उनको ये वाला काम करके दिखाना चाहिए था, इमाम हुसैन के बाद दीगर आइम्मा भी आए हैं। अच्छा, अब देखिए उलमा ये कहते हैं कि खुद आयतुल्ला मिलानी से भी बात पूछी गई कि आइम्मा में से क्यों किसी ने फिर ये अमल नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुस्तहब करार देने वाले जो उलमा हैं, जो उसको मुस्तहब करार देते हैं, वो इस वजह से मुस्तहब करार नहीं देते कि बाकायदा किसी इमाम ने इसके लिए कोई दलीलें खास पाई जाती है कि मसलन इमाम ने इस काम को किया हो, बल्कि ये مصادیق اور عمومات اور اطلاقات عزاداری کے اندر شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز عزاداری میں شمار ہوتی ہے اس بنا پر، اور ہر وہ چیز جو عزاداری میں اور شاعر حسینیہ میں شمار ہو وہ مستحب ہے، تو اس باب میں انہوں نے مستحب قرار دیا ہے. اچھا، جو علماء اس کے قائل ہیں جو مستحب قرار دیتے ہیں، آپ بھی ہوں گے نا، بھائی مستحب کس دلیل سے قرار دیا ہے، جبکہ آئمہ کا عمل تو نہیں ہے. کسی امام نے مثلا ایسا نہیں کیا. اول تو ابھی میں اس کے دلائل جو وہ لوگ دیتے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ تینوں حجت ہوتے ہیں. قول معصوم، امام نے کہا کام کرو، ضروری ہے کرنا، یعنی آپ کو پتہ چل گیا مستحب قرار دیا یا واجب قرار دیا. فعل معصوم، امام نے کوئی کام کر کے دکھایا، اس کا مطلب بھی ہے کہ سنت ہے وہ، کہ امام نے وہ کام کر کے دکھایا. اور ہے کہ ایک ہے تقریر معصوم، امام کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور امام خاموش رہے ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کام جائز ہے. کیونکہ اگر یہ کام حرام ہوتا تو امام کے لیے ضروری تھا کہ امام اس کام کو منع کرتے. یہ تینوں چیزیں حجت ہیں. اچھا، اب جو دلائل دیتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، وہ کچھ روایتوں کو لے کر آتے ہیں. مثلا ایک روایت بنی اسد کہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسد کی روایت ہے کہ بنی اسد کے لوگوں کو جب واقعہ کربلا ہو گیا اور چوتھے امام کے سامنے بنی اسد کے لوگ آئے، تو انہوں نے غم میں اپنی تلواروں کو نکال کے اپنے سروں کو لہولہان کیا اور ایک جملہ کہا، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. تو یہ جملہ انہوں نے کہا. اچھا، امام کے سامنے کام ہوا لیکن امام نے ان کو نہیں روکا. تقریر معصوم ہے، تقریر معصوم حجت ہے. امام کے کام کو خود کرنا ضروری نہیں ہے، نہ امام کا قول ضروری ہے. امام کے سامنے ہوا اور امام خاموش رہے، حرام کام ہوتا تو امام روکتے. دوسری روایت حضرت زینب سلام اللہ علیہا، چوب محمل پر جب سر اغلا سے امام حسین علیہ السلام کو نیزے پر بلند دیکھا، تو شدت غم میں جو چوب محمل تھی اس پر اپنے سر کو مار کر زخمی کیا اور خون جاری ہوا. وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ عالمہ غیر معلمہ، اور چوتھے امام کے سامنے یہ عمل ہوا اور امام نے نہیں روکا، فعل معصوم کے علاوہ جو تقریر معصوم ہے یہ بھی حجت ہوتا ہے، تو اس بنا پر اس کا جائز ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. یعنی جو وہ لوگ دلائل اس سلسلے میں دیتے ہیں. اچھا، اب روایت کے اندر یہ آئے کہ یہ روایت مرسل ہے. اچھا، اس پہ ہماری ایک وہ ہوگی کہ جو طرفین کے ظاہر ہم دلائل صرف آپ کے سامنے پیش کریں، اپنا ذاتی تو کوئی بھی نظریہ نہیں، جو دونوں طرف کی پارٹیز کہتی ہیں وہ آپ کے سامنے. جو مخالف اعتراض کرتے ہیں ان دلائل پہ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے، مرسل مرسل ہے. مرسل کے معنی ہے کہ اس کا سلسلہ سند امام تک نہیں پہنچتا ہے، بیچ میں سے ایک آدھ راوی مسنگ ہے اس کا. تو مرسل اگر مرسل روایت جو ہے اس سلسلے میں کارآمد نہیں ہے، یعنی اس قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس بنا پر اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ان روایات کی بنیاد پر. اب اس کا بھی وہ پھر کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں، وہ بھی آگے چل کر آ رہا ہے. تو ہماری کتنی کتابوں کے اندر کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جب نظر کوفے میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر پڑی، تو اپنی پیشانی کو چوب محمل پر مارا اور پیشانی مبارک سے خون جاری ہوا، یعنی ان کے مقنے کے نیچے سے خون، روایت کے جو جملہ ہے وہ جاری ہوا. بہار الانوار میں بھی ہے، اور مستدرک سفینۃ البحار میں بھی ہے، اور نفس المحموم میں بھی ہے، یا ناب المودہ میں بھی ہے، ناسخ التواریخ میں بھی ہے، اور جلال العیون میں، منتخب تریحی میں، دمۃ الثاقبہ میں، معالی السبتین جو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو کتابیں، وسائل الدارین، وسیلۃ الدارین، اور حیات امام حسین، اور اسرار الشہادات وغیرہ، سب کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے مرسل طور پر. اچھا، اب باقاعدہ جو بہار کی روایت ہے کہ فلتفتت زینب فرات راس اخیہ فنتحت جبینہ بمقدمہ المحمل حتی رائن الدم یخرج من تحت قنایہ، کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نظر کوفے میں بھائی کے سر اقدس پر پڑی، تو پیشانی کو چوب محمل پر مارا और पेशानी मुबारक से खून जारी हुआ। बहुत सारी इसके अंदर फिर मुनाकशात हैं, यानी अगर फकत इसी रिवायत के दोनों तरफ के दलाइल जिक्र करें तो पूरे 2-3 घंटे चाहिए, इतना ज्यादा इसके अंदर बहसें। कुछ कहते हैं कि जनाब चौबे महमिल कहां से, तो बेक अजावा ऊंटों के ऊपर थी। तो वो दलील देते हैं कि बेक अजावा ऊंटों के मायने कि सिर्फ ऊपर से जो कवरिंग होती है वो निकाल दी गई थी, वरना चोब जो है वो लगी रह गई थी, जिसकी वजह से मारा, चाहे ऊपर कुछ नहीं था। कुछ कहते हैं कि वो, आप तो कहते हैं कि जनाब तहता कनाया जो इसके अंदर आया है कि उनके मकने के नीचे से खून जारी है, वो तो मसलन उनके तो बाल खुले हुए थे तो मकना कहां से आ गया। उस पर भी उलमा के फिर जवाब आते हैं कि कुछ कहते हैं कि सरों से उनकी चादर, पहले मकना होता था, ऊपर से एक चादर एक्स्ट्रा ली जाती थी, तो नेजों से चादरें उतार ली गई थी, मकने अपनी जगह पे बाकी। बहुत सारी इसके अंदर पहलू और इतनी बहसें हैं कि वो आप उसमें अगर जाएंगे तो बहुत, क्योंकि हमारा मौका भी नहीं है इसका, और ना हमें कोई यहाँ कोई दरस खारिज टाइप का कोई चीज ना साबित थोड़ी कर रहे हैं कि मुज्तहिदीन के दलाइल वो जो तरफ है कुछ है वो सिर्फ जिक्र हो रहे हैं। तो अब ये चीज जो है कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो जायज ही नहीं है क्योंकि रिवायत मुरसल है, लेकिन कितने ही मराजे ऐसे हैं कि जो इसको यानी उलमा की काबिल जिक्र तादाद के नजदीक ये रिवायत बहरहाल कामाजनी के लिए दलील नहीं, उलमा की काबिल जिक्र तादाद है। जैसे कि खुद आयतुल्ला शेख हाफिज बशीर नजफी जो कि खुद कामाजनी के कायल हैं, अब तो वीडियो वगैरह भी आपने देखी, उनसे भी जब इस रिवायत की सनद के मुतालिक पूछा गया कि जनाब हजरत जैनब ने महमिल के अगले हिस्से पर जो पेशानी मारी थी और उससे खून जारी हुआ था तो क्या कमाजनी के जवाज पर दलील है, तो उन्होंने कहा रिवायत मक्तल और तारीखी किताबों में मुरसल तौर पर मौजूद है, लेकिन इल्मे रिजाल और इल्मे दराया के कवानीन और जवाबित की रोशनी में इसकी सनद का साबित होना मुश्किल है, लेकिन कमा और जंजीर के जायज होने पर यह दलील नहीं है। यानी और दलाइल है उनके पास लेकिन ये वाली दलील नहीं, लेकिन मराजी की तादाद ऐसी है जो इन रिवायत को मोतबर और काबिल इस्तदलाल भी समझती। देखिए आमतौर पर ये कहा जाता है ना कि आपस में जो लड़ाई हंगामा जो सोशल मीडिया और उसके ऊपर भी हो रहा है और इन चीजों को जब दलील के तौर पर बनाया जाता है तो क्या रिवायत मुरसल है, बस ये लिखते हैं रिवायत मुरसल है लिहाजा बिल्कुल गलत नहीं। उलमा की बहुत मराजे की बहुत बड़ी तादाद इस रिवायत को सही समझती और उसकी बिना पर फतवे देती। आयतुल्ला सादिक रूहानी, उनसे जब भी पूछा बाकायदा उनके ऑफिशियल वेबसाइट का जिस जो एड्रेस है वो भी आप टाइप करें तो पूरा फतवा निकल आएगा आपको कि रिवायतें जो बनी असद है कि उन्होंने अपने इमाम के सामने अपने सर पर तलवार मारकर जख्मी किया था, क्या ये रिवायत मोतबर है, और इमाम का खामोश रहना और उनका फिर वो जुमला कहना या लैतना कुन्ना माकुम सैयदी फनफूजा फौजा नजीमा, ये जो उन्होंने कहा था, और ये जो दूसरी रिवायत है क्या ये सही है कि सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने महमिल पर चौबे महमिल पर सर मारकर अपने सर को जख्मी करने वाली जो रिवायत है। जवाब उनका ये है नाम मौजूदतान व मुक्तबरतान, जी हाँ ये दोनों रिवायात मौजूद भी हैं और मोतबर भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ, एक तरफ तो उलमा वो हैं कि जो कि इन रिवायत को मोतबर नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ उलमा ऐसे हैं जो रिवायत को मोतबर भी मानते हैं। अब हम बैठ के उनका मीडिया ट्रायल शुरू कर दें, नहीं ये इस बिना पे मुरसल है और वो है नहीं, ये फिर ये इज्तिहादी मसला है, अभी तो मर्जी का खुद का काम है कि वो क्या अपना नजरिया बनाता है। इस पर भी इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी कि थोड़ा सा ये बात पता चले। अच्छा, इसी तरीके से ये बात उनसे एक और फतवे में भी पूछी गई कि हजरत जैनब किस तरह से महमिल पर सर मारकर जख्मी करने वाली जो रिवायत है, तो उन्होंने कहा कि चौथे इमाम ने खामोशी इख्तियार की थी और बड़े बड़े उलमा ने इस रिवायत की बिना पर जिस अजाए इमाम हुसैन में जिस्म से खून निकालने को जायज करार दिया है, बड़े बड़े उलमा ने, और इसको इस्तदलाल के तौर पर नकल किया है और मैं भी इस इस्तदलाल में उनका ताबे हूं। बाकायदा आयतुल्ला सादिक रूहानी ने इसका फतवा दिया। इसी तरीके से आयतुल्ला शेख जवाद तबरेजी, वो भी इसको इस रिवायत को उस तौर पर मोतबर समझते हैं और दलील के तौर पर लाते हैं। इसके अलावा आयतुल्ला मिर्जा मुर्तुजा फिरोजाबादी हैं, और इसके अलावा शेख जवाद तबरेजी सादिक रूहानी का तस्करा हुआ, इसके अलावा लुत्फुल्ला साफी गुलपायगानी ये भी महाराजे में से हैं, आयतुल्ला वहीदी तबरेजी ये भी महाराजे में से हैं, इन्होंने भी इसके जायज होने का फतवा दिया। और सआदतुद्दारैन में भी, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बहरहाल अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी साहब ने अपनी किताब के अंदर कहा है कि अगरचे कुछ साहेब तेराजुल मजहब ने इसको सर तोड़ पूरी कोशिश की कि जैनब के जो वाक़े की नफी की है, तो उन्होंने कहा है कि नहीं ये दोनों चीजें उनसे साबित हैं, حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہ انہوں نے پورے صبر و ضبط سے بھی حضرت زینب نے کام لیا کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلیاں اور دلاسے دیے ہیں، اور وہاں یہ بات بھی ثابت ہے کہ گریبان چاک کر کے منہ پر تماچے بھی مارے ہیں، لہذا حسین جیسے عظیم بھائی کا اچانک انہوں کے سنا پر دیکھ کر فرد غم و علم کی وجہ سے چوبے پالان پر سر دے مارنا کوئی تعجب انگیز بات نہیں. تو علماء میں اس میں اختلاف موجود ہے، تو وہ ایک بات اس سلسلے میں نہ کریں. بہت سی روایت میں خود ملا حسین نوری نے دار السلام جو ان کی کتاب ہے اس میں ایک روایت ہے کہ امام زین العابدین کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص نے چند مصائب کربلا کو یاد کیا تو امام سیدھے کھڑے ہو گئے اور مصیبت امام حسین نے اپنے سر مبارک کو دیوار سے مارا جس سے خون جاری ہوا، اور آپ کے سر و صورت کا خون سینے پر آیا، آج جناب کی ناک اور سر مبارک زخمی ہو اور شدت گریہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. تو کچھ علماء اگرچہ بہت سی روایات اس کے اندر ضعیف بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایات بھی واجب و حرام میں تو نہیں چلتی ہیں، لیکن مستحب اور مباح قرار دینے کے لیے ضعیف روایات پر بھی عمل ہو جاتا ہے یا مرسل روایت پر بھی، ان کے الگ دلائل ہیں جو انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گے. اسی طریقے سے باقاعدہ چار مقاتل ہیں، لہوف ابن طاؤس کا جو اور مقتل حسین عبد الرزاق المقرم کی، نفس المحموم اور مقتل ابی مقنف، چاروں مقاتل جو ہیں معتبر ہیں. اس میں خود حضرت عابس ابن ابی شبیب شاکری کا جب میدان جنگ کربلا میں روانہ ہوئے تو یزیدی لشکر میدان سے موم کی طرح ہر سمت فرار ہوا روایت ہے، تب حضرت عابس نے اپنے بدن مبارک کو اوریاں کر کے اپنی تلوار سے اپنے سارے مبارک پر مار کر لہو لوہان کیا اور فرمایا حب الحسین اجننی، ہاں میں حسین کے غم میں دیوانہ ہو گیا ہوں. یہ باقاعدہ ان کہتے ہو. علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ صحابی کا کوئی عمل تو حجت نہیں ہے، وہ تو آئمہ کا عمل حجت ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خود امام وہاں پر موجود تھے، امام کے سامنے کام ہوا تھا، اور حضرت امام نے بالکل اس وقت اسلام کا پورا ظہور وہاں پر ہو رہا تھا. ممکن نہیں تھا کہ عابس ابن شبیب شاکری جیسا جو کہ قرآن کا حافظ بھی تھا، دین کا بھی بہت بڑا عالم تھا، وہ ایک حرام کام کا عین اسی دن جس وقت مارکہ حق و باطل ہو رہا تھا اور اسلام کو بچایا جا رہا تھا، ممکن نہیں تھا کہ کوئی حرام کام اس جگہ پہ کرتا. اگر کر بھی دیا تھا اور وہ حرام تھا تو امام کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی. تو اس سے بھی پتہ چلا وہ علماء جو ان روایات کو پیش کرتے ہیں وہ ان باتوں کو بھی لے کر آتے ہیں، اگرچہ اس لحاظ سے حجت نہیں ہے لیکن ایک اطمینان ہوتا ہے کہ امام کے سامنے اگر یہ کام ہوا تھا اور امام خاموش رہے تھے تو تقریر امام بھی حجت کے اندر آتا ہے، اور معتبر مقاتل کے اندر یہ والی روایت موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ آیت اللہ ثانعی، اچھا اب ان کی ایک میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں.
مثلا در همین قرن زدن این تاریخ دارد، اینکه نمیشه گفت ما بگیم قرن نزنیم، قرن زدن یه تاریخ دارد. در حادثه کربلا وقتی حضرت زینب علیه السلام الله میرسه توی بازار کوفه و سر بریده رو میبیند، فنتحت رأسها به مقدم المحمل، سرشو به چوبه یه محمل زد، خون جاری شد. این سرشو به چوبه یه محمل زد نه یعنی با توجه سرشو به چوبه یه محمل زد، نمیشه که آدم با توجه سرش بزنه به چوبه محمل، این که درست نیست. یعنی عشق و علاقه به برادری و به امام معصوم مثل عدی عبدالله اختیار رو از دستش گرفت، بنا کرد سرش رو بزند، سرش به چوبه محمل خورد و خون جاری شد، این کاری که غم زنا میکنه.
تو اس میں بھی انہوں نے اپنے دیکھا کہ یہی بات بیان کی کہ اور اس میں اس کا اعتبار کہ یہ والی روایت بھی معتبر ہے. نہیں وہ علماء کہ جو کہ اس کو معتبر نہیں مانتے ہیں ان کا ایک الگ فتویٰ ہوتا ہے، جو اس کو معتبر مانتے ہیں ان کا فتویٰ الگ ہو جاتا ہے، جو جن کی تقلید میں اس کے مطابق عمل کرے اس میں جھگڑے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے خود ساختہ دلائل کے طور پر پیش کرنی شروع کر دی. نہیں ایک یہ تو وہی ہے باقاعدہ جو عابس ابن شبیب شاکری نے جو بات کہی تھی حب الحسین اجننی، کہ باقاعدہ اس کی اس پہ باسم کربلائی وغیرہ نے باقاعدہ اس جملے کے اوپر نوحے بھی ہیں ان کے بہت سے. اچھا وہ ہے اویس قرنی کے دانت توڑنے کی روایت، یہ کسی بھی مجتہد نے اس کو جائز قرار دینے کے لیے دلیل کے طور پر ذکر نہیں کیا، یہ لوگوں نے خود ساختہ ایک دلیل بنائی عام عوام نے کہ حکایات الاولیاء کے اندر مثلا فرید الدین عطار نے جو والی روایت لکھی تو ہماری کسی کتاب کے اندر معتبر کتاب میں بھی موجود نہیں حضرت اویس قرنی، اور باقاعدہ خود آیت اللہ حافظ بشیر نجفی جو کہ خود اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں وہ بھی اویس قرنی کے متعلق جب ان سے فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دانت توڑنے کا واقعہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں، اگرچہ پاکستان میں بہت مشہور ہے لیکن یہ صحیح سند سے ثابت